नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9585 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर पुनर्विचार के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 16वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4 लाख करोड़ से अधिक के आवंटन की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआरपीबी को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। कुल 9585 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत उन ट्रक और बस के मालिकों को प्रोत्साहित करना है जो BS4 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं, ताकि वो उन्हें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल सकें। इस परियोजना को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2 साल की इस योजना का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस बदली जाएंगी।
दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने की घटना में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। घटना के फौरन बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण CATS एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमें तेजी से मौके पर पहुंची और बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया। 40 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू ने कहा कि सरकार मृतकों के परिवार के साथ है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही सभी एजेंसियां दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। राजधानी में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अधिकारी सभी संबंधित दस्तावेज जुटा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इमारत के पास वैध NOC थी या नहीं।
कार्रवाई चल रही है, ऐसी एक भी इमारत को छोड़ेंगे नहीं। गिरफ्तार किया जाएगा मालिक को जिसने लापरवाही की है, सब पे कार्रवाई हो रही।
दिल्ली अग्निशमन सेवा के जनसंपर्क अधिकारी AK मलिक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिस इमारत में आग लगी है वह अंदर से पूरा पैक है।
सामने की तरफ फसाड़ लगा हुआ था और जितनी भी ओपनिंग बिल्डिंग के अंदर थी वो सारी सील। तो इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं दे एक्ट एज ए चिमनी, तो इसमें जब भी कभी फायर एक्सीडेंट होगा तो हीट और स्मोक बहुत तेजी से सारी फ्लोर पर फैल जाता है, जिससे कि लोगों को निकलने का समय नहीं मिलता।
दिल्ली सरकार ने कहा है कि सरकार त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर जनसेवा सदन पहुंचे। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामलों के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई केवल शिकायत दर्ज कराने का माध्यम नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास, संवाद और जवाबदेही को मजबूत करने का अहम मंच है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस साल 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए निष्पक्ष और वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। इससे पहले न्यायालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और विशेषज्ञों द्वारा नए सिरे से समीक्षा करने का निर्देश दिया था। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं या पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
दिल्ली नगर निगम MCD ने आज जंगपुरा और डिफेंस कॉलोनी अंडरपास क्षेत्रों में चल रहे नागरिक सुधार कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सफाई और व्यापक स्वच्छता गतिविधियों की समीक्षा भी की।
इस दौरान MCD की जमीन पर अतिक्रमण का भी निरीक्षण किया गया और सार्वजनिक स्थानों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हटाने के आवश्यक निर्देश जारी किए गए। नगर निगम ने क्षेत्र में भीड़ कम करने और यातायात की सुगमता बढ़ाने के लिए सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण कार्यों की प्रगति का आकलन किया। वहीं निगम ने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए विकसित की जा रही वर्षा जल संचयन संरचना की भी समीक्षा की। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने क्षेत्र में कचरा और निर्माण मलबा फेंकने से रोकने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे बन रही सुरक्षा दीवार का भी जायजा लिया। निगम ने लाजपत नगर में चल रहे पार्क पुनर्विकास कार्यों की भी समीक्षा की और सभी परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
दिल्ली सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज बताया कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के माध्यम से राशन व्यवस्था को लेकर कुछ अधूरी और भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था में भी जनता को हमेशा राशन मिलता रहेगा। श्री सिरसा ने कहा कि इस व्यवस्था में यह फायदा है कि अगर लोग 2-3 महीने तक भी राशन नहीं ले पाते हैं तो वो राशन अगले महीने की पात्रता में जुड़ जाएगा और लोग उसे बाद में ले सकेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि एक प्रोग्रामेबल डिजिटल व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इसे अधिकृत राशन दुकानों पर अनाज खरीदने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कोई दूसरी वस्तु नहीं खरीदी जा सकेगी और न ही राशि किसी अन्य काम में इस्तेमाल हो सकेगी। दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस महिला आरोपी के पास से 216 ग्राम मादक पदार्थ और 5 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई। ये बरामदगी दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने और सक्रिय पुलिसिंग तथा निरंतर प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से जन सुरक्षा बनाए रखने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई मादक पदार्थ निरोधी दस्ते ने सुल्तानपुरी से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 2 किलोग्राम से अधिक का मादक पदार्थ और एक स्कूटी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने जमीनी स्तर के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए 16वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों को 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास एक विकसित भारत की नींव है। आधुनिक शासन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए श्री सिंह ने पंचायत प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल उपकरणों और नवीन समाधानों को अधिक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते, और इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में के प्रति उनका समर्पण रहा। हम पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम कीजिए, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके।
दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत 34 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत 8 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह में एनपीए 2025 की शेष श्रेणियों को शामिल किया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के 6 स्नातकोत्तर और 4 PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ई काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में दाखिला केवल ई काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 8 जून तक संस्थान की वेबसाइट www.iimc.admissions.nic.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। पहली सीट आवंटन की सूची 9 जून को जारी की जाएगी। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। दिल्ली में आज सुबह के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर पुनर्विचार के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।